ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। श्री नहयान दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे चौथी रणनीतिक वार्ता और 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संयुक्त अरब अमीरात के नेता का स्वागत करते हुए एक पोस्ट में कहा कि उनके इस दौरे से भारत और यूएई के बीच बहुआयामी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से जुड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत की। सत्र के दौरान मिस्टिक ओरिजिनल्स की टीम लीडर ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बताई गई सुरक्षा चुनौतियों पर अपना समाधान प्रस्तुत किया, जिसे माइक्रो डेवलपर आधार पर पक्षियों और ड्रोन के बीच अंतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर संबोधन के दौरान टीम के समर्पण की प्रशंसा की। लोकसभा में ध्वनि मत से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन और रेलवे बोर्ड तथा उसके स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन के अधिकार को बढ़ाने के प्रावधान हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं भंडारण की सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा घटा दी है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 10 मीट्रिक टन से घटाकर 5 मीट्रिक टन कर दी गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस साल रबी में 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार दर्ज की गई और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा है। उन्होंने धोखेबाजों द्वारा धन के असीमित स्रोत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इस्तेमाल करने के कांग्रेस नेता के आरोप को निराधार बताया। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों पर केंद्रित शासन मोदी सरकार का मूल सिद्धांत है। वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि विभिन्न प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत 54 करोड़ जनधन खाते और 52 करोड़ से अधिक जमानत मुक्त ऋण मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध फिल्मकार राज कपूर की 14 दिसंबर को उनकी 100वीं जयंती समारोह के पहले उनके जीवन और विरासत को याद करने के लिए कल नई दिल्ली में उनके परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने देश के लिए राज कपूर के योगदान की सराहना की। ये समारोह 13 से 15 दिसंबर के बीच 40 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध गुजराती गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आज से नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। इसमें पूरे भारत के दिव्यांग कारीगर, उद्यमी और कलाकारों की प्रतिभा के साथ ही उनकी रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमता, दृढ़ संकल्प और कौशल को प्रदर्शित करना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 23 से 27 जनवरी तक आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी बर्फ पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। वहीं हॉकी में भारत का आज मस्कट में खेले जा रहे महिला जूनियर एशिया कप के अपने चौथे और अंतिम लीग मैच में थाईलैंड से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल शनिवार को और फाइनल रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।